භද්‍රං समीक्षणाद विषाद दर्शनात् मुक्ति जिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यान योग करने में समर्थ अधिकारी कौन हैं, उसका विवरण भगवान ने संक्षेप में याद कराया। प्रथम तीन श्लोक में कर्म योग का आचरण करने वाला वो सन्यासी और योगी दोनों होते हैं। घर में रहते हुए वो सन्यासी हैं, कर्मों को करते हुए वो योगी हैं, और वही जो हैं कालक्रम से जब योगारूढ़ हो जाते हैं तो ध्यान योग में प्रविष्ट होने में समर्थ होता है। तो प्रथम तीन श्लोक में अधिकार बताया। योगारूढ़ होने का अर्थ है भोग की आकांक्षा से और कर्म करने के वेग से वो मुक्त हो जाता है। तब समझना कि आप योगारूढ़ हो गए। चौथे श्लोक में बताया सर्वसंकल्प सन्यासी होते हैं। तो देखो, दो चीज होती है हमारे मन में, फलाने चीज को भोगना है, वो देखना है वो कैसा है ना। हम भुंजे, मैं भोग करूं करता हूं, ये चीज अनुभव करना चाहिए। एक हमारे बड़े महापुरुष थे महात्मा, तो कहा करते थे कि संतों देखो, ऐसा है ब्रह्म तो अपनी आत्मा ही है, ब्रह्म तो सदा प्राप्त ही है, इसलिए उसके लिए कोई फिकर हमको नहीं है। लेकिन अपने घूमते घामते ब्रह्मलोक देख करके जाएंगे। ब्रह्मलोक का वर्णन आता है बढ़िया, बोले यहां वहां ऐसा सरोवर है, अयरम मदीयम सर, ये सब सांदुग्य में वर्णन आता है। अरे महाराज, और क्या क्या भाई, क्या है थोड़ा देख के जाना है। तो देखने की इच्छा भी असल में ये भोगने की ही इच्छा है, ऐसा नहीं समझना कि दो अलग अलग चीज है, देखना ही भोगना है और क्या। तो मुझे इसका आस्वादन करना है, इसका अनुभव करना है, ये एक वासना का ये एक कैटेगरी, और दूसरा है इसको कैसे पाया जाएगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये करके मैं वहां उस भोग को प्राप्त करूंगा, अहम करोमि, तो मैं भोगूंगा और मैं करूंगा। जितने भी हमारी अभिलाषाएं हैं ये दो कैटेगरी में सारे आ जाते हैं ना, साध्यैषणा और साधन एषणा, ये दो ही हैं प्रकार, है ना। वो जो तीन ऐषणा बताया ना, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, उसको फिर जो है ये दो में ही अंतर्भाव कर दिया। अंततः कुछ विशिष्ट प्रकार के सुख हम चाहते हैं और वो कैसे प्राप्त करें वो रास्ता चाहते हैं, बस ये तो दो तो चीज है ही है। तो बहुत ज्यादा हम लोग चाहते नहीं है, दो ही चीज चाहते हैं बहुत ज्यादा हमारी डिमांड नहीं है, भुंजे या भुंशे और करिष्यामी। और ये दो प्रकार की वासना से मुक्ति कैसे मिलेगी, कर्मयोग से। कर्मयोग करते करते आपका चित्त एक विशेष प्रकार शुद्धि को प्राप्त कर लेगा, उसमें प्यूरिटी आएगी। और फिर आपके भीतर विवेक का जागरण होगा। ये जो साधन चतुष्टय बोलते हैं ना, ये साधन चतुष्टय कैसे मिलता है, कर्मयोग से। और कर्मयोग के अंतर्गत उपासना यानी भक्ति को भी डालना है, दो ही कांड है ना, कर्मकांड और ज्ञान कांड ना। तो हम लोग जब कर्मयोग कहते हैं तो इंक्लूडिंग भक्ति योग उसमें डाल करके बोलते हैं ये वेदांत चर्चा के समय, क्योंकि अंततः भक्ति भी कुछ ना कुछ मेंटल एक्टिविटी ही है। तो कर्म सच्चे भाव से जागृति के साथ करते करते विवेक उत्पन्न होता है, नित्य और अनित्य का विवेक। पहले तो हमको ये समझ में नहीं आता था कि नित्यानित्य विवेक में इतना क्या रखा है, तो सबको समझ में आता है कि सब नाशवान हैं, इनमें कोई अनित्य पदार्थ नित्य पदार्थ नहीं है, ये तो समझ में आता है, और कोई नित्य होगा परमात्मा। इसका विवेक कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, है वो क्या। देखो संसार से सुख पाने की भरोसा आप में है कि नहीं है, है। और सुख आप कभी भी ऐसा नहीं चाहते हो कि थोड़े देर के लिए रहे और जिंदगी भर तड़पते रहे, ऐसा चाहते हो नहीं। अर्थात नित्य सुख की अभिलाषा हमको है, किनसे, जो अनित्य पदार्थ हैं। तो यदि हम ये समझते हैं कि जिस शरीर से हम सुख चाह रहे हैं ये ढीला पड़ जाएगा, जिन वस्तुओं से व्यक्तियों से हम सुख की आकांक्षा कर रहे ये खो जाएगा नष्ट हो जाएगा, तो संसार से सुख पाने की भरोसा हमको रहेगी, रहना चाहिए? नहीं। अगर है भरोसा तो मैंने नित्यानित्य विवेक नहीं है। जिस दिन विवेक हो जाएगा कि ये सब खिसक करके चला जा रहा है, अनित्य है, और इस प्रकार से कभी भी हमारे पास सुख रहेगा नहीं, तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। संसार से सुख पाने की भरोसा टूट जाएगी कि हम जिस नित्य सुख को चाहते हैं ये तो संसार की कोई भी वस्तु दे ही नहीं सकता। तब तो नित्य के लिए तड़पन होगी। और जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, क्या ये कर्म जो है नित्य सुख दे देगा? तो इसलिए उन कर्मों की, क्योंकि ये सांसारिक पदार्थों को कमाने की ही, उपार्जन करने के लिए हम कर्म करते हैं, तो उसमें भी भरोसा टूट जाएगी, माने साधन में, उपाय में। इसलिए परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेदमायन। ब्राह्मण माने ब्रह्म प्राप्त के लिए अभिलाषा रखने वाले जो साधक हैं, ब्रह्म को अपरिच्छिन्न अनंत सुख को, माने भगवान को दूसरे शब्द में जो ढूंढ रहे हैं, और वो जब परीक्षण करने में समर्थ होता है, ये विवेक हुआ ना, वो परीक्षण करता है, एग्जामिन करता है, और परीक्षण करके उसको ये समझ में आता है नास्ति अकृतः कृतेन। जिस नित्य चीज की प्राप्ति हम चाहते हैं वो अनित्य वस्तु से कभी, अरे जो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा वो आपको कैसे नित्य बना देगा या नित्य सुखी बना देगा? तब जाकर के उसको निर्वेद आता है। तो देखो कर्मयोग करते करते ये आना चाहिए। कर्मयोग जब आप ईमानदारी से करोगे तो आपके चित्त इतना शुद्ध होने लगेगा कि ये सारी चीजें जो हैं आपके भीतर पनपने लग जाएंगे, दिखने लगेंगे आपको ये सब। तो इसलिए यहां कहा कि वो दोनों संकल्प, माने सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते, माने विवेक वैराग्य सट संपत्ति मुमुक्षुता सब ले लेना, कर्मयोग का ही रिजल्ट है वो, आपको योग्य बना दिया। तो उस समय आपका चित्त कैसा हो जाएगा कि मुझे ये भोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे तो अनित्य सुख ही मिल सकता है, और इसलिए मुझे किसी कर्म की भी आवश्यकता नहीं है। कर्म से जो भी बनेगा वो बना हुआ ही होगा, वो नित्य पदार्थ नहीं होगा। अब जब आपको करने की वासना माने संकल्प ढह गया कि कुछ करना है जिंदगी में और कुछ पाना है, तो फिर आपका चित्त कितना शांत हो जाएगा, और फिर निश्चित रूप से आपको समाधि योग लगेगी। अब बाहर भटकेगा क्यों चित्त, जब बाहर भटकने की कोई प्रयोजन ही नहीं रहा उसके पास में। तो अत्यंत वैराग्यवत समाधि, अत्यंत वैराग्य जिसके भीतर उत्पन्न हुआ उसको समाधि लगती है। समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः, और समाहित को दृढ़ ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान तो हम लोगों को भी होता है पढ़ के सुन के मनन करके, लेकिन वो दृढ़ नहीं है। जब धक्का आता है तो ज्ञान पता नहीं कहां गायब हो जाता है महाराज। समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः, कितने अच्छे अच्छे वेदांत की बात कहते हैं, लेकिन जब मौत सामने खड़ा हो जाता है तो सब एकदम कम जाते हैं है ना, क्योंकि उस समय पता लगता है कि ये शरीर ही मैं हूं। तो जो इमेजिनरी नॉलेज है, काल्पनिक ज्ञान है, वो तो वास्तव का सामना नहीं कर पाएगा। तो समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः, हाँ उसका जो है ज्ञान वास्तविक होता है, और जिसका दृढ़ प्रबोध हुआ उसके लिए अज्ञान हमेशा नष्ट हो जाएगा, और जिसका अज्ञान नष्ट हो जीवन मुक्त पुरुष है, उसका वर्णन भी अब आ ही रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योगारूढ़ हम हुए कब समझे, जब भोगने की इच्छा और करने की इच्छा दोनों समाप्त हो जाए। और जिसने अपनी साधना से माने कर्म योग के द्वारा अपने आप को वहां पहुंचाया, तो समझ लो कि उसने अपने आप को संसार से उद्धार कर लिया, क्योंकि अब उसके लिए बहुत ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि सबको अपना उद्धार करना चाहिए। पांचवें श्लोक में देखो, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। स्वयं अपने को उद्धार करे, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, स्वयं ही अपने आप को उठाओ। उद्धरेत माने ऊर्ध्वम, हरेत ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाना माने योगारूढ़ बनो। इसी को उत्तिष्ठत बोलते हैं ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, उठो भैया उठो, बहुत सो लिए, क्या नींद है, बस संसार सुखी करेगा, खूब मजे से सो रहे हो। तो इससे इस निद्रा से, ये मोह निद्रा है, बड़ी भारी भ्रांति है महाराज, ओहो। और ये मोह निद्रा जो है कितने जन्म जन्म से हम लोगों को यही कष्ट में डाला हुआ है। तो भगवान कहते कि उद्धरेत संसार सागरे निमग्नम, भाष्यकार कह रहे हैं संसार सागर में जो डूबा हुआ है, निमग्न है, डूब रहा है, और एक लहर से किसी तरह जो है बचा, जब तक श्वास दोबारा ठीक से लेने लगे तब तक दूसरा समुद्र में स्नान करने जाओ तो पता लगता है। तो उद्धरित माने योगारूढ़तम आपादयित, उठो उठो उठ जाओ। बड़े प्रेम से भगवान बोल रहे हैं ना, कितना प्रेम से बोलते हैं देखो, उद्धरेद आत्मनात्मानम। कहा कि नहीं होता, नहीं होता महाराज, ये जो मन है ये उसी सब कीचड़ में फंसा रहना चाहता है, क्या किया जाए, है ना। शरीर और शरीर संबंधित जो ये सांसारिक सुख है, इसी में उसको बड़ा मजा आता है, बड़ा उलट पुलट होता है। आप लोग जब बोलते हो, शास्त्र जब बोलते हैं, तब समझ में तो आता है, लेकिन जैसे ही कुर्सी से उठा सुनते हैं कि महात्मा लोग सुनाते हैं कि भगवान विष्णु वराह बन के आए थे, है ना। अब उनको वराह शरीर उनको इतना प्यारा लगा, और पृथ्वी से तो बड़ा प्रेम ही है, बड़ा लोटपोट उसी कीचड़ में, और महाराज उधर से वैकुंठ का सिंहासन खाली, और ये जाए ना, क्यों? क्योंकि यहां जो है ना, उनको वराही भी मिल गई, अब बच्चे उच्चे भी हो गए बोलते हैं। अब बड़ा आनंद से देवता लोग आकर के प्रार्थना करें, महाराज चलो। बोले कहां? बोले वैकुंठ में, आपका सिंहासन खाली है। बोले तुम्हारे वैकुंठ में क्या है? अरे वैकुंठ में महाराज आपके लिए स्वर्ण सिंहासन है, सब लक्ष्मी जी स्वयं आपकी सेवा में हैं, सब वर्णन किया वैकुंठ के दिव्य भोगों का। कहा कि वहां कीचड़ है। सड़ी हुई चीजें हैं। बोले ना ये तो नहीं है। ले जाओ, तुम्हारे वैकुंठ में कुछ नहीं है, मुझे तो यही ठीक लगता है। खूब उसमें पड़े हैं महाराज। विष्णु ये जीव ही हैं, है ना, इन्हीं को कह रहे हैं, खूब मजा लग रहा है ना। तो अब देवता बड़े परेशान हुए, कहा कि अब क्या करें भैया, इनको तो ले जाना है, ये तो इसी में रमा हुआ है, अब क्या करें? अब भगवान का ही दिमाग फेर जाए तो क्या करोगे बताओ। तो कहते कि फिर ये लोग ब्रह्मा जी के साथ सलाह करके सब गए शंकर भगवान के पास। महाराज ऐसी ऐसी स्थिति। बोला अच्छा चलो मैं भी चलता हूं, प्रार्थना करता हूं। आए बाबा भोलेनाथ, कहा कि महाराज चलो। अरे भैया आप फिर कैसे आ गए, मुझे तो यही मजा है। बोले चलते हो कि नहीं चलते हो? बोले मैं नहीं जाता हूं। त्रिशूल उठाया, मारा त्रिशूल और फाड़ दिया वराह का शरीर, वहां से बाहर निकले। अरे महाराज बड़ी रक्षा किया। बोले क्या हो गया था, मैं इसी में फंसा हुआ था इस कीचड़ में। तो जब तक मार न पड़े ना, तब तक हम लोग सीखते कहां है भैया। तो इसलिए अब इतनी आसक्ति है इन चीजों में, इतना अच्छा लगता है, और समझते हुए मन में बड़ी ग्लानी हो जाती है, और फिर हम अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। एक मां बोल रही थी, महाराज हम तो स्वयं ही अपने इस सारे दुख और परेशानी का कारण हैं। भगवान कह रहे अरे रुक जाओ, नात्मानम अवसादयेत, इतना अपने को दीनहीन मत करो, इतना दयनीय अपने आप को मत बनाओ, अपने आप को ब्लेम करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ब्लेम करने से और फंसोगे। ऐसा ही है, इस सिचुएशन से धीरे 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 अपने आप को बाहर लाना है। इसलिए धीरज बनाए रखो, लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे साधक जो है ना, डिप्रेशन में चले जाते। मैंने पहले दिन जब प्रवचन शुरू किया था तो मैंने बताया था, विद्वान पुरुष और अच्छे वैराग्यवान, लेकिन इतने दिनों से जो हम साधना कर रहे हैं, तो जो सफलता मिलनी चाहिए वो तो मिला नहीं, मृत्यु निकट आ रहा है, ये भी जीवन चुक जाएगा। और फिर ऐसा सोचते सोचते वो बहुत जो है अवसन्न हो जाते हैं कि हमसे होगा नहीं। तो उसके लिए भगवान सावधान कर रहे हैं, होगा निश्चित आपसे होगा। जब भगवान कह रहे हैं कि भैया अपने आप को अवसन्न मत बनाओ, इसका मतलब है परमात्मा ने मनुष्यों को ऐसा सामर्थ्य दे करके भेजा, आपको ऐसा सामर्थ्य मिला हुआ है, उसको डिस्कवर करना है अपने भीतर कहां है वो शक्ति, कहां सामर्थ्य, लेकिन है। नात्मानम अवसादयेत। अच्छा, और जब अवसन्न हो जाओ तो उत्साही महापुरुषों के पास, जिनके सन्निधि में रहने से थोड़ी आपके भीतर भी ऊर्जा भर जाती है ना, ऐसे महापुरुष, ऐसे साधक, ऐसे योगी का संग करना चाहिए, तो आवश्यक है वो। देखो, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। आप स्वयं अपना बंधु हैं, अपना मित्र हैं, और स्वयं ही अपना शत्रु हैं। जो आप दूसरों को मित्र और शत्रु समझते हैं, इस दृष्टि को थोड़ा शुद्ध करना पड़ेगा। आपका कोई दूसरा शत्रु मित्र नहीं है, आप स्वयं अपना शत्रु हैं और स्वयं अपना मित्र हैं। ये भी समझने की चीज है, क्योंकि हम लोगों को झट से दूसरा ही दिखता है कि इसने किया महाराज हमारी स्थिति के लिए। या तो हम अपने को जिम्मेदार करके बड़े अवसन्न हो जाते हैं, और नहीं तो इनके कारण हुआ है। तो कह रहे आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, कैसे महाराज हम अपने शत्रु अपने मित्र कैसे। अच्छा भैया, किसी को बहुत बड़ी बीमारी लग गई, शुगर जो है 500 पहुंच गया, ठीक है, डॉक्टर ने कहा महाराज मीठा नहीं खाना है। अब वो कहता है कि मीठा ही नहीं खाएंगे तो फिर जी करके क्या करेंगे। हा? एक स्वामी जी, बहुत दिन पहले की घटना है, उस समय मेरा उतना अनुभव भी नहीं था, आए अपने आश्रम में, कहा कि महाराज देखो मैं आलू नहीं खाता हूं, ये नहीं खाता, मेरा शुगर हो गया। एक साथी भोजन करने बैठे, तो अब आश्रमों में आलू खूब चलता है क्योंकि वही थोड़ा सस्ता पड़ता है, उस समय तो खूब ही चलता था। अब उनके भाई गेस्ट है, उनके लिए थोड़ा सा अलग से ख्याल रखना पड़ता है। तो संयोग से उस दिन रसगुल्ला आ गया आश्रम में। अब परोसने वाला परोस रहा है, तो जैसे उस संत के पास वो जा रहा है, तो मैंने देखो, मेरा भी नादानी से देखिए, मैंने कहा क्या, अरे उनको नहीं देना, वो फेंक देंगे, क्योंकि ये तो मीठा खाते नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, रसगुल्ला एक तो चलता है महाराज। अब मैं बड़ा जो शर्मिंदा हुआ, अरे राम राम, मैंने जो है रसगुल्ला तो चलता है लेकिन आलू नहीं चलता। तो भैया, ये जो कुपथ्य हैं, तो कुपथ्य नहीं करना, बीमारी और बढ़ जाएगी, मर जाओगे। और यदि आप कुपथ्य करो तो इसके लिए किसको दोषी दोगे, किसको दोषी ठहराओगे, तो स्वयं अपना दुश्मन बने कि नहीं बने। अपना स्वास्थ्य, अपना मन सबको बिगाड़ने का काम किसने किया, आपने किया, समझ करके किया। बड़ी विशेषता है कि ना समझी में करे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन समझ करके हम लोग अपने आप को बिगाड़ते हैं, तो अपना दुश्मन हुए कि नहीं। इसी प्रकार समझ करके जब आप सदाचारी बनते हो, सन्मार्ग पर चलते हो, संयम में अपने आप को रखते हो, तो आप अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, अपना मित्र बन गए कि नहीं बन गए। दूसरा मित्र ऐसा आपका हित काम नहीं कर सकता। तो भैया, अपने आप को उठाने का और अपने आप को गिराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप कर सकते हो दोनों काम। तो इसलिए भगवान सावधान कर रहे हैं। तो जिसने कहा कि जिसने अपने शरीर इंद्रिय मन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया पूरी तरह, ये नहीं वह आत्मना जिता, वो अपना मित्र है। और जिसने इन सब को अनट्रेन्ड और अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया है वो अपना शत्रु का काम कर रहा है। इससे बड़ा शत्रु और कौन होगा। तो इस प्रकार से अपने आप को योगारूढ़ बनाओ और योग में डूबो। ये बात आई। अब इस योग के अभ्यास जिसको पूरा हो जाता है तो किस प्रकार के वो योगी बनते। योगी का लक्षण हम बोल रहे हैं ना चौथे श्लोक से आपके नौवें श्लोक तक, ये योगी का लक्षण है। और खास करके कर्मयोगी की बात तो पहले बता दिया, अब ये ध्यान योगी और युक्त योगी। युक्त योगी जहां पर वो योग पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसकी बात करें सातवें आठवें नौवें श्लोक में। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचन। युक्त इति उच्यते योगी, उस समय योगी युक्त माना जाता है। अब ये योगारूढ़ से, योगारूढ़ में क्या होता है, जब चाहे वो योग में लग सकता है, उसके मन में इतनी ताकत आ गई, लेकिन फिर समाधि से बुत्थान होता है उसको, ठीक है ना। लेकिन युक्त योगी कौन है, जिनका योग नित्य सिद्ध हो गया, अब समाधि में रहे और बुत्थान अवस्था में रहे, उनका योग कभी टूटता, ये युक्त योगी कहा जाता है। कौन है वो, उसके वर्णन भगवान कर रहे हैं। जितात्मनः, जिसने शरीर इंद्रिय मन पर विजय प्राप्त कर लिया, ये सारे उनके कंट्रोल में हैं। प्रशांतस्य, और प्रशांत हो गए भीतर से। वैसे तो योगारूढ़ता से ही एक प्रकार प्रशांति आ गई उसको, लेकिन अभी भी उसको, वो साधक है ना, तो योग में हमको ये कर्तव्य है ना, साधना रूप कर्तव्य तो रहा ना उसका। अब वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो भीतर से संपूर्ण प्रशांत हो जाएगा। अब साधना भी उसकी करना नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो कि परमात्मा समाहितः, परमात्मा समाहितः माने साक्षात आत्मभावेन वर्तते, परमात्मा को वो साक्षात अपना स्वयं का स्वरूप के रूप में अनुभव करता है। अर्थात इस समय हम अपने आप को देह, स्त्री पुरुष या नाना प्रकार के आइडेंटिटी से जुड़ करके देखते हैं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, और ये जो है मैं ब्रह्म हूं, इस अनुभूति में वो स्थिर है, उसकी आइडेंटिटी वो बन गई, अनुभूति बन गई है। आइडेंटिटी भी काल्पनिक आइडेंटिटी नहीं है, अनुभूति बन गई। परमात्मा साक्षात आत्मा भावे न वर्तते, उसकी आत्मा के रूप में बैठ गए। अभी हमारी आत्मा के रूप में हमारा अहम होगा, हमारा मन होगा, हमारे इंद्रियां होगी, हमारा शरीर होगा, है ना, यही मैं हूं। लेकिन उनका जो है अर्थात उसका अनुभव है कि ये सब, ये मैं, यह, ये सब जो है एक अखंड सत्ता है और वो मैं हूं, जिसका वर्णन हम लोगों ने पहले ही कर लिया ना। जो योगी अपने को सब में देखता है और सबको अपने में देखता है, ये सब वर्णन हो चुका है। तो ये जो है जब उस तत्व से जुड़ जाता है तो फिर वहां से कभी वो विचलित नहीं होता, परमात्मा समाहित, परमात्मा समाहित रहता है उसका। जैसे आप अपनी अनुभूति कि मैं हूं, इसको हमेशा आप पालते हैं कि नहीं, हमेशा आपके साथ में है कि नहीं, मैं, ठीक है ना। इस प्रकार से वो परमात्मा ही यहां पर मैं की जगह ले लिया, कैसा होगा सोचो जरा। और कहा कि परिस्थिति कैसा भी हो, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण प्राकृतिक वातावरणों में बदलाव होता है, प्रतिकूल, अधिक ठंडी अधिक गर्मी प्रतिकूल होता है, सुख दुख ये अपने मानसिक जो भावों का बदलाव है, मान अपमान लोगों के द्वारा होता है, माने आध्यात्मिक आधी भौतिक और आधी दैविक जो दुख हैं, इन सब में वो परमात्मा कभी खोते नहीं है, उसका परमात्मा समाहित। और एक बात और देखिए, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, महाराज ज्ञान से और विज्ञान से वो तृप्त हो गए। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान से तृप्त हो गए और कुछ जानना नहीं है। आप लोग नहीं ना तृप्त हुए भैया?
बहुत लोग जल्दी तृप्त हो जाते हैं।
ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ये किसकी बात कह रहे हैं? जिसने सब कुछ जान लिया। मनुष्यों में हमेशा जिज्ञासा रहती है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो भौतिक जिज्ञासा हो चाहे आत्म जिज्ञासा हो। और जिसको परमात्मा ब्रह्म का अनुभव हो जाता है वो सब कुछ जान लेता है ना, एक ज्ञान से सर्वज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान से और विज्ञान से, विज्ञान माने अनुभव, दोनों से वो तृप्त हो जाता है। तृप्त शब्द का अर्थ है जैसे आपने भोजन किया और भोजन करके आप तृप्त हो गए, माने और बस और नहीं चाहिए, एकदम भर गए महाराज, पूरन पूरन बोलते हैं हम लोग, महात्माओं की भाषा है, पूरन माने पूर्ण हो गया, पूर्ण पूर्णम तृप्तम। तो ज्ञान और विज्ञान से वो भर जाते हैं, कितना ज्ञान की वर्षा होती है उनको, है ना। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च तद ज्ञानम, योग सूत्र में एक सूत्र आता है कि कैसा ज्ञान होता है, कहा कि वो तारकम, तारक ज्ञान है, और उस ज्ञान में वो ज्ञान में क्या विषय है महाराज, कहा कि सर्व विषयम, अर्थात ये सारा विश्व उस ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, सर्व विषय ज्ञान है। अभी जो हमारा ज्ञान है एक एक छोटी छोटी चीजों को हम जानते हैं, इसको देखते हैं तो उसको नहीं देख पाते हैं, इसको सुनते हैं तो देखना स्पर्श करना ये सब बंद हो जाता है ना, मन बहुत छोटे स्तर पे काम करता है। और उनका सर्व विषयम, एक साथ में सबको, जैसे सूर्य कैसा एक साथ में सबको प्रकाशित कर देता है ना, ऐसा सर्वथा विषयम। और एक एक वस्तु की भी सारी जो कुछ उसके भीतर की विशेषताएं हैं समस्त धर्मों के साथ, अर्थात उसके डेप्थ में भी वो जाता है। और अक्रमम माने युगपत, इंस्टेंट, सारा एक साथ, ऐसा ज्ञान होता है, उसको अनुभव हो जाता है महाराज। तो ज्ञान और विज्ञान से वो तृप्त हो जाते हैं, अब ज्ञान की भी आवश्यकता उसको नहीं रहती है। इसको बोलते हैं पर वैराग्य, जब तृप्त हो जाते ज्ञान से विज्ञान से। कूटस्थ, स्वाभाविक है कि वो जो है चलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता। विजितेंद्रिय, विजितेंद्रिय इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी अब जितेंद्रियता सहज है, उनके लिए कोई साधना नहीं रही। ऐसे योगी युक्त कहलाते हैं जो लोष्ट, अश्म और कांचन में समदृष्टि रखता है, ये सब समान हो जाता है उनको। और साथ ही साथ सुहृत मित्र उदासीन अरि, शत्रु मित्र, साधु असाधु माने सज्जन दुर्जन, इन सब में समबुद्धि उसकी हो जाती है। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर् विशिष्यते, समान देखता है सबको। अब समान देखता है ये जो है बड़ा खटका लगता है ना। अरे महाराज, राम को और रावण को दोनों को समान कैसे देखा जाए, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को समान कैसे देखा जाए, और दोनों को समान देखेंगे तो वो अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। तो देखो, दो दृष्टिकोण से समता स्थापित हो जाती है। एक तो ये शरीर, इंद्रिय, मन आदि के जो भी विकार हैं, उससे आत्मा का कोई स्पर्श नहीं है। और जैसे ये सब मुझे नहीं छूता है, किसी को भी नहीं छूता है, यही हकीकत है। तो इसलिए सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो हम लोग ना जब किसी को देखते हैं तो ये बाहर चेहरे में ही अटक जाते हैं, एक सज्जन से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और फिर हम जो हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, भस्म हो जाएगा। हमने कहा कि भाई आप कैसे भस्म हो जाओगे, कहा कि तो यही तो देख रहे हैं। हमने कहा कभी आपने देखा है ठीक से, देख रहे हैं क्या, देखा आपने किसी को, देखा कि नहीं ठीक से। कहा कि देखो, मेरी मां चली गई और वो जो हैं उनको ले जाकर के महाराज हमको ही मुखाग्नि करना पड़ा, अब भस्म हो गई। बोले तो मां को आपने भस्म कर दिया, कहा कि हां। अरे भैया, मां को कैसे आपने भस्म कर दिया, ध्यान दीजिए, हम लोग कितना कम देखते हैं। उनकी पत्नी भी पास में बैठी थी, बोले स्वामी जी देखो, हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही, इनसे हमारा बड़ा प्रेम है, इनके खुश करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, और फिर एक समय जब जाना होगा तो यही सब छूट छाड़ करके चले जाएंगे। हमने कहा आपने प्रेम, आप प्रेम करते हो ना पति से। बोला बहुत प्रेम करता हूं, कभी देखा उनको ठीक से। अरे क्या बोलते, कभी देखा उनको ठीक से। तो भैया ठीक से देखा करो, जब तक पास में हैं ठीक से देखा करो, बोले क्या मतलब है? बोले देखो, आप क्या देख, तो आंखों को तो देख रहे हो, और आंखों से जो देख रहे हैं उसको देखते हो कि नहीं देखते हो? उनको पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी। हमने कहा अच्छा बताओ, ये आंखें देख रही हैं कि आंखों से कोई और देख रहा है? भैया आंख तो इंस्ट्रूमेंट है ना, नहीं तो देखो वही शरीर पड़ा है जो आप कह रहे हो कि मां को भस्म कर दिया। तो शरीर ही अगर मां होती तो शरीर तो अभी भी है, क्यों उसको भस्म किया? तो जो उसके भीतर एक कोई सत्ता थी जो आंखों से देखती थी और मुख से बोलती थी, पैरों से चलती थी, हाथ से पकड़ती थी, लेकिन न मुख है न आंख है न हाथ है न पैर हैं, उसको कभी देखा? उसको देखा करो ना, जिससे सचमुच आप प्यार करते हो उसको भी कभी नहीं देखते। हम लोगों की तो बढ़िया इसी जिंदगी, कितने उथले उथले जीते हैं बताइए। है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज को हम गहराई से नहीं देखते हैं। तो आंखों से जो देख रहा है उसको महसूस करो, प्रेम भी करो तो थोड़ा ईमानदारी से करो ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति जो ज्ञानी है, युक्त योगी है, वो इस प्रकार से उनकी दृष्टि ये नाम रूप को भेद करके आत्मा तक पहुंची हुई है, इसलिए वो सब के भीतर वो जो एक वस्तु बैठा हुआ है उनको पहचानने में वो भूल नहीं करते। अरे भैया तुम साधु बन करके आ गए हो, मैं पहचान लिया है? कोई भी रंग रूप ले करके आ जाओ, मैं आपको पहचानता हूं। तो वो जो आत्मा सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को वो आविष्कार कर लेता है नाम रूप के बाह्य आवरणों को भेद करके, इसलिए वो समबुद्धि हो जाता है। रही बात दुर्योधन और युधिष्ठिर को एक समझने की, तो भैया देखो ऐसा है, दुर्योधन और युधिष्ठिर इसका भेद जो है एक स्तर पर तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस स्तर की बात हो रही है वहां पर महत्वपूर्ण नहीं है। सोने की मूर्ति बना हुआ राम जी की और रावण का भी, आपके लिए राम और रावण होंगे लेकिन सोनार के लिए दोनों बराबर है, सोना है। तो जो सोने को पहचान रहा है उसके लिए बाहरी भेद का केवल बाहरी मूल्य है, लोग मूल्य देते हैं इसके लिए मूल्य है, बाकी और कोई मूल्य नहीं, बस इस प्रकार से वो देखते हैं। अब जो नाटक कर रहा है तो नाटक में वो जो है नाटक के पात्र में भी अभिनय कर रहा है और रो भी रहा है कि मेरी सीता चली गई, रावण ने अपहरण कर लिया, खूब रो रहा है, और भीतर से जानता है कि महाराज ना तो मेरी सीता है ना उसका किसी ने चुराया है, या सीता होगी भी तो वो सुरक्षित है अपनी, माने जो अभिनय करता है उनकी पत्नी, तो इसलिए वो एक साथ में डीपर लेवल पर जानता है कि मैं राम नहीं हूं, और एक प्रोजेक्टेड रूप में वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है जानबूझ करके कि मैं राम हूं। दोनों स्तर से उसका कम्युनिकेशन वैसा ही होता है। इसी प्रकार ये जो युक्त योगी हैं उसके भीतर ये होता है कि वो समबुद्धि है, लेकिन साथ ही साथ में प्रोजेक्टेड सेल्फ माने ईगो को लेकर के जानबूझ करके वो भेद के अनुरूप भी व्यवहार कर सकता है, चाहे तो कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। अर्थात वो जो भोजन करेगा, हाँ, कहा कि भैया सब ब्रह्म है सब ब्रह्म है, तो चावल ही रोटी ही क्यों खाते हो, ईंटा पत्थर खाया करो। ना? अरे भैया सब ब्रह्म तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन
ये जो मनुष्य शरीर धारी जो ब्रह्म है ना, वो ईटा पाथर नहीं खाता है, वो वही खाता है, और खाने पर भी सबकी ब्रह्म रूपता में कोई अंतर नहीं आता। रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे कि एक चेला जो है बड़े माने सिंसियर थे, अपने हिसाब से गुरुजी जो कहे उसी को मान ले। तो गुरुजी ने कहा कि सब नारायण है, सब ब्रह्म है। अब सब ब्रह्म है, वो सब में ब्रह्म भावना करने लगा, देखने लगा, ठीक भी है। तो एक दिन कहीं आश्रम से बाहर गए थे तो उधर से जो है वो हाथी पगला गया और उसके ऊपर जो महावत है उससे कंट्रोल नहीं होता। महावत ने बड़े जोर से चिल्लाया, भैया हाथी पगला गया है, भागो भागो भागो। सब भागे लेकिन वो ब्रह्म दर्शन करने वाला साधक क्यों भागेगा? तो वो जो है हाथी में भी नारायण देखने लगा महाराज, और हाथी को नारायण देख करके उसकी स्तुति करने लगा। महावत चिल्लाता रह गया, भैया भाग। तो हाथी आया, सूंड से पकड़ा और हाथी नारायण ने उसको फेंका खेत में। अब हल्ला हो गया, आश्रम में खबर पहुंच गया, गुरुजी आए दौड़ते दौड़ते, उनके साथ चले आए, सब उनको उठाया। अब पैर उड़ तो सब टूटा ही था, ले गए किसी तरह, सब ठीक ठाक सोया हुआ है। गुरुजी ने कहा कि तू भागा क्यों नहीं रे? कहा कि गुरुजी आप ही ने कहा था सब नारायण है, तो हाथी नारायण है, तो मैं नारायण से क्यों भागूं? गुरुजी ने कहा मूर्ख, हाथी तो नारायण है, ऊपर से जो महावत नारायण चिल्ला रहा था उसकी बात क्यों नहीं सुना? तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी ना, तो भैया सावधान रहना, सब में समबुद्धि सुन करके किसी का ऐसे ही पगला न जाए। तो सब नारायण है, सब ब्रह्म है, किस तरह से ब्रह्म है, और नाम रूप में भेद है, लेकिन ये भेद मिथ्या है और मिथ्या भेद का ही व्यवहार होता है ना। लेकिन किसी के प्रति उसके आत्मभाव या घृणा में, घृणा आत्मभाव में कोई अंतर नहीं आएगा, वो किसी से घृणा नहीं करेगा, किसी से विद्वेष नहीं करेगा, सबको अहंता की दृष्टि से भी वो अपना मानेगा, लेकिन व्यवहार उसका वैसा ही होगा, उसके अनुरूप होगा, नाम रूप के अनुरूप होगा। सोना तो सब है लेकिन डिजाइन, भैया अब कान में जो कुंडल लगाओगे, हाथ में बलय लगाओगे, और हाथ का बलय कान में लगाओगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा, सोना तो सोना ही है, व्यवहार तो उस ढंग से होगा। लेकिन व्यवहार में ही हम लोग फंसे रहते हैं, हमको परमार्थ दिखता नहीं है, इसलिए हम बंधन में पड़े रहते हैं। और उनको परमात्मा अपनी आत्मा के रूप में दिखती है और सदा दिखती है, ये है युक्त योगी। तो उनके लिए सब समान है, बाकी भेद तो एक नाटक का खेल है महाराज, उसमें राम भी हैं, सीता भी हैं, रावण भी है, सब है, लेकिन इसी को सत्य नहीं मानेगा। और हम लोगों के लिए यही जो है, मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटी हूं, यही सत्य है, मैं आत्मा हूं, ये तो आप लोग कहते हो, तो ये अंतर पड़ जाता है एकदम, माने बिल्कुल बदल जाती है। मैं आत्मा हूं यही सत्य है, और ये तो एकदम नाटक है, ये तो संसार का एक खेल है। सूत्र का उच्चारण करते, ध्यान योगे न साम, ध्यान योगे न साम, ध्यान योगेन साम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।